स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 1 फरवरी और दिन सोमवार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने की औपचारिक मुहिम आज से होगी शुरू।
When they leave our country and they go to fight, they can never, ever, ever, ever come back.
सीरिया में कल हुए बम धमाके में कम से कम 50 लोगों की मौत, तो क्या जिनेवा शांति वार्ता पर होगा इसका असर, करेंगे एक विश्लेषण। आंध्रा में ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे कापू समुदाय के लोगों ने की आगजनी।
गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 2 पुलिस स्टेशन बरन, 1 आउट पुलिस स्टेशन बरन, रेलवे 4 बोगी सर बरन।
अखबारों की समीक्षा और खेल समाचार भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नेता अपनी अपनी पार्टियों के वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां रिपब्लिकन पार्टी में मुख्य धारा के समर्थकों के समर्थन के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं उनके धुर प्रतिद्वंद्वी टेड क्रूज को कंजर्वेटिव और इवांजेलिकल समूहों का समर्थन हासिल है। डेमोक्रेटिक पार्टी में बर्नी सैंडर्स को पीछे छोड़कर हिलेरी क्लिंटन आगे चल रही हैं। यूरोपियन पुलिस एजेंसी यूरोपोल ने कहा है कि यूरोप आने वाले करीब 10,000 शरणार्थी बच्चे लापता हैं। यूरोपोल के मुताबिक इन बच्चों के साथ उनके परिवार नहीं थे और रजिस्ट्रेशन के बाद ये बच्चे गायब हो गए हैं। यूरोपोल के अध्यक्ष ब्रायन डोनाल्ड ने एक अखबार को बताया कि इटली में ही करीब 5,000 बच्चे गायब हैं। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत मिले हैं कि इन बच्चों का आपराधिक गैंग शोषण करते हैं। शरणार्थी मामलों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IOM के प्रवक्ता लियोनार्ड डॉयल ने कहा है कि कई बच्चे खतरे में भी हो सकते हैं।
I think a lot of it is probably innocent. Indeed, it is joining families and then kind of disappearing into the protection of their family.
कई बच्चे अपने परिवारों को मिल गए हो सकते हैं, क्योंकि वे अपने परिवार के साथ हों तो उनका पता नहीं चल पा रहा हो सकता है, ऐसा भी हुआ हो, लेकिन बाकी बच्चे तस्करों का शिकार भी हुए हो सकते हैं। युद्ध और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय बच्चे सबसे ज्यादा ऐसी समस्या का शिकार बनते हैं। तो जो बच्चे अकेले आते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं कि अफगानिस्तान से कुछ लड़के अकेले ही आए थे, ये लोग अपराधी का शिकार बन सकते हैं। ये थे लियोनार्ड डॉयल के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपियन यूनियन के विदेश मामलों के अध्यक्ष फ्रेडरिका मोगरीनी ने कहा है कि सीरिया में धमाका संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सीरिया शांति वार्ता में रोड़ा अटकाने के लिए किया गया है। रविवार को हुए इस धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। फ्रेडरिका मोगरीनी ने कहा कि जिनेवा में हो रही बातचीत में सीरिया के विपक्षी दलों के हिस्सा लेने से वे उत्साहित हैं। सीरियाई सरकार के प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बशर अल जाफरी ने कहा कि दमिश्क में एक मस्जिद के बाहर हुए हमले से साफ हो गया है कि विपक्ष और चरमपंथ आपस में जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि आज सीरियाई सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में चरमपंथी संगठन बोको हराम के संदिग्ध हमले में कई लोग मारे गए हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में करीब 80 लोगों की मौत हो गई है। चश्मदीदों ने बताया कि चरमपंथियों ने गांव में झोपड़ियों को जला दिया और वो जलते घरों से बच्चों की चीखें भी सुन सकते थे। बचे हुए लोगों ने यह भी बताया कि जले हुए शव सड़कों पर बिखरे हुए दिख रहे हैं। बीबीसी समाचार।
तो एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है फरवरी की पहली तारीख और दिन सोमवार। अभी वक्त हो चला है 6:33:45। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से। कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, हिलेरी क्लिंटन या डोनाल्ड ट्रंप या फिर कोई और? इसका फैसला तो इस वर्ष नवंबर में होने वाले चुनावों में होगा, लेकिन यूं कहा जाए तो आज से चुनावी प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार तय करने की मुहिम आज से औपचारिक तौर पर आयोवा राज्य में शुरू कर रही हैं। वैसे तो अमरीकी चुनाव पर हमेशा पूरी दुनिया की नज़र रहती है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवारी की कोशिश में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद बयानों ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय आज आयोवा के डिमॉन शहर में हैं। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
गुड इवनिंग, इज़न्ट ही द बेस्ट?
पिछले महीनों में अपनी काबिलियत के गवाह के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी को लेकर आए हैं। हिलरी के लिए बिल क्लिंटन चुनावी मुहिम में कूदे हैं। कभी फ्रंट रनर समझे जाने वाले बुश खानदान के दूसरे चिराग जेब बुश ने वोटरों को रिझाने के लिए यहां बर्गर तले हैं। टेड क्रूज बंदूकों से अपना लगाव दिखाने चिड़ियों के शिकार पर गए हैं। महीनों की मेहनत के बाद आज सबके लिए इम्तिहान की घड़ी है। रिपब्लिकन्स में यहां टक्कर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और टेड क्रूज के बीच नजर आ रही है। ट्रंप ने रिपब्लिकन वोटर्स के खास तबके को अपनी तरफ करने के लिए कभी मेक्सिकन्स को कोसा है तो कभी मुसलमानों को। पहले तो उन्होंने खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन के साथ संबंध रखने वाले मुसलमानों पर रोक लगाने की बात की, बाद में सभी मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर रोक लगाने की बात कही।
They can never, ever, ever, ever come back. It's over.
वहीं क्रूज कभी ईसाइयत पर खतरे का हवाला देकर तो कभी ट्रंप को डेमोक्रेट्स का एजेंट करार करते हुए उम्मीदवारी पर कब्जा करने की कोशिश में है। डेमोक्रेट्स में कहां तो लग रहा था कि हिलरी क्लिंटन के लिए मैदान बिल्कुल साफ है, लेकिन 2008 की तरह ही एक बार फिर उन्हें यहां कड़ी टक्कर मिल रही है एक बिल्कुल ही अनजान उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स से।
American people are saying very loudly and clearly that we have got to create an economy that works for all our
Senator Bernie Sanders ka kehna hai ki amerikee janta ki mang hai ki desh ki arthvyavastha sabki behtari ke liye ho sirf ikke dukke logo ke liye nahi। कड़ाके की सर्दी में आज शाम आयोवा के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अपने अपने उम्मीदवार चुनेंगे। यहाँ मिली जीत उम्मीदवारों की किस्मत तो नहीं तय करती, लेकिन पहली गेंद पर छक्का लग जाए तो पूरी पारी की रफ्तार ही बदल जाती है। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर यहाँ के 350 से ज़्यादा चक्कर लगाए हैं। पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ पहुँची हुई है, तो इतनी अटेंशन आयोवा वालों को कैसी लगती है?
I love it. I think Iowa plays a very important role and I think it's justified.
एक महिला कह रही थी कि टीवी पर लगातार जारी इश्तिहारों से वो तंग हो जाती हैं। वहीं दूसरे साहब का कहना था कि उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आयोवा को इतना महत्व दिया जाता है। ये एक जिम्मेदारी का काम है। शायद इसलिए आज इस चुनाव के दूसरे पहलुओं से कहीं ज्यादा दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि आयोवा डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को गले लगाता है या फिर ठोकर मारता है। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी, डिमोइन, आयोवा।
और अमेरिका के बाद अब चलते हैं सीरिया। सीरिया में पैगंबर मोहम्मद की नवासी सैयदा जैनब की मज़ार के पास कल हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं और कम से कम 100 लोग घायल हुए हैं। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले सुन्नी चरमपंथी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ये धमाके तब हुए हैं जब सीरियाई सरकार और विपक्षी गुटों के बीच जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर बातचीत शुरू हो रही है। ऐसी सूरत में सीरिया में सरकार और विद्रोही गुटों के बीच बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, इस सवाल का जवाब जानने के लिए बीबीसी उर्दू के हमारे साथी उमर आफरीदी ने सऊदी अरब में स्थित वरिष्ठ पत्रकार राशिद हुसैन से बात की।
सबसे बुनियादी बात जो है कि कम से कम गुफ्तगू शुरू तो हुई है, इस मकाम तक तो लोग आए हैं। वरना अगर आप आज से दो चार महीने पहले तक की बात देखिए या इवन अगर आप जुमरात और जुमे तक भी बात देखिए तो खदशा ये लग रहा था कि शायद ये गुफ्तगू शुरू ही ना हो सके, क्योंकि जो दोनों पार्टियां हैं यहाँ दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस ली हुई हैं और दोनों उस पोजीशंस पे काफी एडमेंट से नजर आते हैं। तो जुमे को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था कि जो एक सीरियन अपोजिशन ग्रुप है उसने किसी हद तक एक शर्त लगा दी कि जब तक सीरियन हुकूमत हम पर बमबारी बंद नहीं करेगी और हमारे इलाकों की जो नाकाबंदी है उसको बंद नहीं खत्म नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हम गुफ्तगू में नहीं आएंगे। लेकिन लगता यह है कि कुछ दूसरी कुव्वतें इन पर असरअंदाज भी हावी हुई और बिलाखिर गुफ्तगू शुरू हुई है। तो सबसे बड़ी कामयाबी जो मुझे इस वक्त नजर आती है कि कम अज कम गुफ्तगू हो तो रही है।
और खुद ये जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं जिस तरह आपने कहा कि इन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस होंगे इन्हें?
देखिए بڑے زبردست قسم کے چیلنجز ہیں, کوئی ایک چیلنج نہیں ہے. یہاں جتنی پارٹیاں ہیں, ایک تو یہ کہ اپوزیشن بھی کسی حد تک تمام اس حقیقت کے باوجود کہ سعودی عرب کی آشیرواد کے بعد ایک مین سیزن اپوزیشن گروپ بھی بنا جس میں 25 دوسرے گروپس موجود ہیں, ان کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, تو وہ کس حد تک بالکل یکسوئی کے ساتھ ایک پوزیشن پہ جمے رہیں گے یہ بھی ایک سوال ہے. جو سیرین گورنمنٹ ہے وہ کس حد تک لینے اور دینے پہ تیار ہے, وہ اس پر تیار ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر جو یہاں جو قوتیں ہیں, جو طاقتیں ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ قطر ہو, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے روس ہو, چاہے ترکی ہو, کوئی بھی, ان سب کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور کوئی بھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو اتنی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب تک اگر آپ اس پہ دیکھیے کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں, تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. جو یورپ میں آج آپ کو ایک کہانی نظر آتی ہے امیگرنٹس کی اور ریفیوجیز کی, ان کی ایک بڑی تعداد سیریا کے اس ہنگامے سے نکلی ہوئی ہے, تو پوری دنیا میں اتھل پتھل ہے, لیکن اس اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے.
جو سیریا کے اندر صورتحال ہے وہ تو بہت خراب ہے, آپ نے ذکر کیا کہ لاکھوں لوگ اس میں مر چکے ہیں, اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ فاقہ کشی کا عالم ہے کئی علاقوں میں, اور امدادی کارکنوں کو پہنچنے کی میں مشکلات ہیں, تو وہ اس کی کیا صورتحال ہے اب جبکہ کچھ امداد پہنچی ہے وہاں پر؟
وہاں ایک طرف تو آپ نے بالکل یہ کہا کہ فاقہ کشی کا ہے, لاکھوں لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے, کسی کو مل رہا ہے تو کہیں سے پہنچ رہا ہے, باقی بہت سی ایک بہت بڑی تعداد, ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جہاں جنگ و جدل جاری ہے, اور دونوں قوتیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہیں کہ جو عام ورکرس ہیں, ایڈ ورکرس ہیں, وہاں پہنچ سکیں. پھر وہاں ایک طرح کی سول وار ہو رہی ہے. سیدہ زینب کی مزار پر جو کچھ ہوا ہے, وہاں 45-50 لوگوں کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں, یہ سب کدھر رہی ہے؟ تو پورے خطے کو آگ میں جل رہا ہے, اور سیری میں اس وقت دہکتا ہوا آگ ہے جس میں ہر کے ہاتھ جل رہے ہیں. اس پورے خطے کے لوگوں کو اس کو بہت الجھا دیا گیا ہے. تمام طرف کے لوگ اپنی اپنی قوتیں, اپنے اپنے پونس کے ذریعے, اپنے اپنے ان کے ذریعے کھیل رہے ہیں, لیکن قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. ایک عام شامی قوم کو سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے, سب اپنے اپنی سیاسی فتح کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
یہ تھے ورشٹھ پترکار راشد حسین, ان سے بات کر رہے تھے بی بی سی اردو کے ہمارے ساتھی عمر آفریدی.
خبر سچ ہے اگر بی بی سی پر ہے.
اور اب بات ان خبروں کی جن پر رہے گی آج ہم سب کی نظریں.
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है. 26 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिवों के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए बैठक होने वाली है. इसमें तीस्ता समझौता और भारत बांग्लादेश सीमा पर हत्याओं का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहेगा. बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद शाहिदुल हक का विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलने का कार्यक्रम है. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद बंद पड़ा यूनिवर्सिटी का कामकाज आज से शुरू हो जाएगा. रोहित वेमुला ने 18 जनवरी को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद छात्रों के विरोध को देखते हुए यूनिवर्सिटी में कामकाज बंद कर दिया गया था. हरियाणा के मेवात जिले से गिरफ्तार किए गए चरमपंथी संगठन अलकायदा के एक संदिग्ध की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है. अब्दुल समी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नू शहर से गिरफ्तार किया था. झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला समी भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का प्रमुख नेता माना जाता है. भारतीय रेल में गलत उम्र बताकर सफर करने वालों के लिए आज से नया नियम लागू होगा. अब से गलत उम्र बताकर ट्रेन में चढ़ने वालों को बिना टिकट सफर करने वालों की श्रेणी में माना जाएगा. रेलवे ने ये नया नियम बुजुर्गों को मिलने वाली छूट का गलत फायदा उठाने वालों को ध्यान में रखकर बनाया है. दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से दवाएं और टेस्ट मुफ्त कर दिए जाएंगे. दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में 1 फरवरी से यूजर चार्ज खत्म करने की घोषणा की थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि फ्लाईओवर के 3 प्रोजेक्ट से हुई बचत का पैसा सरकारी अस्पतालों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मोटोरोला कंपनी का मोटो एक्स फोर्स फोन भारत में आज लॉन्च हो रहा है। ये पहला स्मार्टफोन है जिसकी स्क्रीन शैटर प्रूफ है, यानी कि इसकी स्क्रीन नहीं टूटेगी। जीका वायरस के बढ़ते संक्रमण से चिंतित विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज आपात बैठक बुलाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष मार्गरेट चैन ने कहा था कि जीका वायरस का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। म्यांमार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होगा। आज नई संसद का कामकाज शुरू होगा, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सत्ता संभाल लेगी। हालांकि संसद की 1/4 सीटें अब भी सेना के पास रहेंगी। नई संसद का पहला काम होगा मार्च में पद छोड़ने वाले राष्ट्रपति थेनसेंग की जगह नए राष्ट्रपति का चुनाव करना।
और अब चलते हैं भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आरक्षण की मांग कर रहे कापू समुदाय के लोगों ने कल ट्रेन की 4 बोगियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कापू समुदाय और उसकी आरक्षण की मांग की पड़ताल करते हुए पूरे घटनाक्रम पर इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
इस तरह की हिंसा शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि प्रशासन को पता था कि करीब 3 लाख से भी ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे, लेकिन पुलिस को भी आश्चर्य हो गया जब कापू समुदाय के नेता मुद्रागढ़ा पद्मनाभम रत्नाचल एक्सप्रेस ट्रेन में थोड़ी देर बैठ गए। उनके निकलने की थोड़ी देर बाद इस ट्रेन की 4 बोगी को आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने आग लगाने से पहले यात्रियों को रेलगाड़ी से निकाल दिया था। आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री चिक्का राजप्पा ने कहा,
गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 2 पुलिस स्टेशन बर्न, 1 आउट पुलिस स्टेशन बर्न, रेलवे 4 बोगी सर बर्न।
प्रदर्शनकारियों ने 4 रेल बोगी को आग लगा दी। तुनी शहरी पुलिस स्टेशन और तुनी ग्रामीण पुलिस स्टेशन पर हमला किया है और हमारे 15 पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। ये थे चिकराजपा के शब्द। दक्षिण केंद्र रेलवे के PRO उमाशंकर कुमार के अनुसार करीब 14 ट्रेन पर इसका असर पड़ा है। उन्होंने कहा,
ईश्वरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चुनी हमसवरम के बीच रत्नाचल एक्सप्रेस को आग लगाया था। सो एजिटेटर्स ने आग लगाने के बाद वो रत्नाचल एक्सप्रेस पूरा जल गया था। तो इसका वजह से जो भी ट्रेन विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा आने वाला ट्रेन जो है वो डिफरेंट स्टेशन में रुक गया था। एंड इसका वजह से हम 14 ट्रेन को कैंसिल करना पड़ लिया, कैंसिल कर दिया।
कापू समुदाय बहुत सालों से आरक्षण की मांग कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कापू समुदाय के ज्यादातर लोगों ने तेलुगु देशम पार्टी को इसी शर्त पर समर्थन दिया था कि अगर राज्य में TDP की सरकार बनती है तो उनको आरक्षण देगी। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने एक और पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया। कापू समुदाय आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों और रायलसीमा जिलों में केंद्रित है। तेलुगु सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी इसी समुदाय के हैं। बहुत सालों से कापू समुदाय इसी मांग पर प्रदर्शन करते आ रही है, लेकिन पहली बार इतनी हिंसा हुई है। आखिर इसका क्या कारण है? हमने यह सवाल कापू समुदाय के नेता और आंध्र प्रदेश के विधान परिषद में कांग्रेस के नेता सीज रामचंद्रया से पूछा तो उन्होंने कहा,
व्हाट हैपेंड, चंद्रबाबू नायडू ही वांट्स टू गेट दिस मीटिंग फेल्ड।
जब कभी कोई प्रदर्शन होता है तो राज्य सरकार की बस की सहूलत हर कोई उपयोग करता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने न सिर्फ बस की सहूलत नहीं दी, उसके साथ साथ बहुत लोगों पर दबाव भी डाला इस प्रदर्शन में भाग नहीं लेने के लिए। इसी गुस्से की वजह से यह हिंसा हुई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को एक नए आयोग की नियुक्त करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जस्टिस पुटस्वामी आयोग ने पहले ही कह दिया था कि कापू समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने एक नया आयोग को नियुक्त करके ध्यान बांटने की रणनीति खेली है। ये थे रामचंद्रया के शब्द। दिलचस्प बात यह है कि कापू समुदाय की मांग को कांग्रेस और YSR कांग्रेस से भी समर्थन मिल रहा है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और ये भी बता दें कि कापू समुदाय ने अपने आंदोलन को कल देर रात वापस लेने का फैसला किया है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, BBC हिंदी।
और अब पाकिस्तान चलते हैं। पिरामिड लोकतंत्र, कुतुब मीनार, नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ में क्या कोई समानता है, या ये शब्द अलग अलग संज्ञा, सर्वनाम और उपमाएं हैं केवल? सुनते हैं पाकिस्तान से वसतुल्लाह खां की ये डायरी।
चीन, रूस, ईरान, इजिप्ट और सऊदी अरब जैसे देशों में तो लोग बाग इसके आदी हैं कि सरकार पैरामिड की तरह हो जिसकी चोटी पे एक शासक बैठा हो और उसकी इजाज़त के बगैर पत्ता भी ना हिले। मगर जो देश पश्चिमी लोकतंत्र का मॉडल अपनाए हुए हैं, वहाँ जब फैसले एक आदमी या चार पांच का टोला लेता है और पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल को उसी वक्त बताया जाता है जब बहुत ही मजबूरी हो, तो मैं सोचता हूँ कि सत्ता अगर ऐसे भी चल सकती है तो उस पे पश्चिमी लोकतंत्र मॉडल का स्टिकर लगाने की क्या ज़रूरत है। भारत के बारे में हम सुनते हैं कि पिछले चुनाव में पहली बार जनता ने पार्टी नहीं, नेता चुना है। अब मोदी सरकार एक कुतुब मीनार हैं और सारे रास्ते, फाइलें और फैसले वहीं जाते और वहीं से आते हैं। अगर इस स्टाइल की वजह से काम तेज़ करने में सहूलत होती है तो बड़ा अच्छा है, मगर होता यह है कि कुतुब मीनारी सत्ता पे बराबर नज़र ना रखी जाए तो फिर ये मॉडल एक पंथ में बदलता जाता है जहां खुशामदियों को ही कहने सुनने की इजाज़त होती है। अब पाकिस्तान को ही देख लें, नवाज शरीफ भले दो तहाई बहुमत ले आए कि सादा बहुमत, अंदाज तीसरी पारी में भी वैसे ही शाहाना है। सब फैसले चार पांच लोग करते हैं, प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस होने के बावजूद कभी कभी दर्शाते हैं। उन्हीं की पार्टी के कई मेंबर तो ऐसे भी हैं जो चुनाव में कामयाबी के बाद एक बार भी प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिला पाए। कहने को एक मंत्रिमंडल भी है मगर उसकी आखिरी बैठक 6 महीने पहले हुई थी। जिन दिनों इमरान खान के धरने ने सरकार को नाकारा करके रख दिया, तब मियां साहब को पार्लियामेंट का अधिकार बुरी तरह याद आता था, लेकिन जैसे ही धरना खत्म, तू कौन मैं कौन। यही हाल सबसे बड़े सूबे पंजाब का है। राज्य असेंबली मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ के चांद चेहरे को तरस गई। सत्ता चार लोग चला रहे हैं, शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शरीफ, कानून मंत्री राणा सनाउल्ला और एक ब्यूरोक्रेट। मंत्रियों का बस यही काम है कि पगार लो, गाड़ी पे घूमो, दफ्तर सजाओ, घर जाओ। पीपल्स पार्टी वैसे तो खांसती भी जनता के नाम पे है, मगर सिंध प्रांत तक सुकड़ जाने वाली सरकार भी आसिफ जरदारी के तस्मे से बंधी हुई है। वो दुबई में है तो सरकार भी दुबई में, वो लंदन में हो तो सरकार भी लंदन में। बताने को कायम अली शाह सिंध के मुख्यमंत्री हैं, मगर असली मुख्यमंत्री जरदारी साहब का मोबाइल फोन है। इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाने के लिए चीख चीख के गला बिठा लिया, मगर खैबर पख्तूनख्वा के सारे फैसले इस्लामाबाद के इमरान भवन में होते हैं। यदि पिशावरियों ने मुख्यमंत्री परवेज खटक का नाम भोंपू खटक रख दिया है। बलूचिस्तान में मुख्यमंत्री को उतना ही अधिकार मिला हुआ है जितना किसी फिल्मी सेट पर राजा का रोल करने वाले किसी भी बी क्लास एक्टर को। असली फैसले क्वेटा छावनी में होते हैं और जो फैसले होने से बच जाते हैं उनकी चिट्ठी प्रधानमंत्री भवन इस्लामाबाद से आती है। बलूचिस्तान की सरकार सरकार कम डाकखाना ज़्यादा है। ये भी सब मंजूर है अगर काम होता नजर आए, काम भी तो आगे नहीं बढ़ रहा।
तो ये थे पाकिस्तान से वसतुल्लाह खां। और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और हरीता अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी हरीता, बताएँ क्या है सुर्खियाँ आज?
इकबाल जी, आज सभी अखबारों की सबसे बड़ी खबर है भारत का ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप। सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया का पहली बार सफाया, हम नंबर वन। जनसत्ता ने लिखा है आखिरी गेंद पर चौके के साथ रैना ने दिलाई जीत। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि कंगारुओं का क्लीन स्वीप। हिंदुस्तान अखबार ने विराट कोहली की तस्वीर के साथ छापी है खबर, सिडनी में सरताज बने। तो ये सबसे प्रमुख खबर के तौर पर छपी है। हिंदुस्तान में एक और खबर मैं देख रही हूँ, पीडीपी अपनी शर्तों पर ही गठबंधन को तैयार। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो सरकार बनाने पर तभी फैसला करेंगे जब भरोसा हो जाए कि भाजपा गठबंधन के मकसद को नतीजे तक पहुँचाएगी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने इसी से जुड़ी खबर छापी है कि भाजपा के साथ गठबंधन अलोकप्रिय और इसकी समीक्षा करेंगे, पीडीपी अध्यक्ष ने कहा है। और जनसत्ता ने लिखा है कि महबूबा के कड़े तेवर से खतरे में गठजोड़, आज पीडीपी बैठक बुलाएगी। इंडियन एक्सप्रेस ने एक और खबर छापी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला है और इसमें लिखा है कि कुछ मांगों को लेकर समझौता हो गया है और आज से यूनिवर्सिटी में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ये समझौता छात्रों और यूनिवर्सिटी के अंतरिम वाइस चांसलर के बीच हुआ है, जो रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद गतिरोध बना हुआ था उसको लेकर ये फैसला हुआ है। दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर एक खबर मैं देख रही हूँ, मोदी को उम्मीद, फसल बीमा और स्टार्टअप से सुधरेगी देश की हालत, जय नौजवान जय किसान, ये नारा मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने दिया है। और एक और खबर, मोदी की निंदा करने के बाद पलटे यशवंत सिन्हा, जनसत्ता ने यह खबर छापी है। कल यशवंत सिन्हा ने गोवा में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के लोग मोदी को धूल चटा देंगे, अब वो उससे पलट गए हैं। जनसत्ता में ही एक और खबर मैंने देखी, पुत्र जीवक पर सरकारी रिपोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ ही रिपोर्ट आई है। तो आज ये सारी खबरें छाई हैं।
बहुत शुक्रिया हरिता आपको इन तमाम अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब वक्त हो चला है खेल समाचार का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कप्तान शेन वॉटसन के केवल 71 गेंदों पर 10 चौके और 6 छक्कों के दम पर जमाई गई 124 रनों की दमदार और धमाकेदार नाबाद शतकीय पारी और आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रनों की मुश्किल परिस्थिति भी भारत को कल नहीं रोक सकी और उसने सिडनी में खेले गए तीसरे और आखिरी 2020 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से मात दी। भारत के सामने जीत के लिए 198 रनों का लक्ष्य था जो उसने केवल 3 विकेट खोकर पूरे 20 ओवर में हासिल कर लिया। रैना 25 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 49 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे छोर पर युवराज सिंह को 3 मैचों की सीरीज में पहली बार बल्लेबाजी करने का अवसर मिला और उन्होंने पुराने चावल जैसी महक बिखेरते हुए अपना जलवा दिखाया जब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। ऐसे में युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एंड्रयू टीए की पहली गेंद पर चौका मारा तो दूसरी गेंद पर मिड विकेट पर छक्का जड़ दिया।
Oh, that's been beautifully struck. It's in, the six are out. It's gone all the way. Can you believe it?
तीसरी गेंद पर बाई की मदद से 1 रन मिला तो चौथी और पांचवी गेंद पर रैना ने 2-2 रन बनाए और आखिरी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर मैच जिताया।
Hit away and that'll be a win. That'll be a boundary. Suresh Raina gets the winning runs for India. What a run chase that is. Unbelievable stuff from India.
युवराज सिंह 12 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले रोहित शर्मा ने 52, शिखर धवन ने 26 और विराट कोहली ने 50 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की 2020 सीरीज 3-0 से एक तरफा रूप से जीत ली। उधर टेनिस के कोर्ट पर शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी बरे को 6-1, 7-5, 7-6 से हराया। जोकोविच ने छठी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता।
The man is unbeaten in finals here, 6-6, Novak Djokovic.
उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर शीर्ष वरीयता हासिल भारत के श्रीकांत ने कल सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया।
Finally, he wins the title, congratulated by his coaches, Srikanth Kadambi.
फाइनल में उन्होंने गैर वरीयता हासिल चीन के वांग यू जियांग को 21-13, 14-21, 21-14 से हराया।
तो भाजपा नेता यशवंत सिन्हा भले ही धूल चटाने वाले अपने बयान से पलट गए हों, लेकिन भारत ने शर्तिया ऑस्ट्रेलिया को कल 2020 में धूल चटा दिया। सुरेश रैना की आखिरी गेंद पर चौके ने भारत को ये शानदार जीत दिलाई। और अब वक्त हो चला है प्रमुख समाचारों का।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी में बर्नी सैंडर्स को पीछे छोड़कर हिलेरी क्लिंटन आगे चल रही हैं। यूरोपियन पुलिस एजेंसी यूरोपोल ने कहा है कि यूरोप आने वाले करीब 10,000 शरणार्थी बच्चे लापता हैं। यूरोपोल के मुताबिक इन बच्चों के साथ उनके परिवार नहीं थे और रजिस्ट्रेशन के बाद ये बच्चे गायब हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन के विदेश मामलों की अध्यक्ष फ्रेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि सीरिया में धमाका संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सीरिया शांति वार्ता में रोड़े अटकाने के लिए किया गया है। रविवार को हुए इस धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में चरमपंथी संगठन बोको हराम के संदिग्ध हमले में कई लोग मारे गए हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में करीब 80 लोगों की मौत हो गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे एल साल्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसिस्को फ्लोरेस की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई है। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे थे और वो नजरबंद किए गए थे। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली हेमंत कुशवाहा ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।